परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए श्रोतृवृंद के हृदय देश में विराजमान श्रवण स्वरूप परमात्मा, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं होता है, एकाग्र रहता है, उस परमात्मा की वंदना करते हुए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, यह पुराण पुरुष की वाणी है जो अंतःकरण में अधिशयन करते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी कृपा से यह संसार चलता है, यह शरीर में कई अंग हैं, जिन अंगों में जो चेतना प्रदान करने वाला ईश्वर है, इस शरीर को पूरी बना करके इसमें चेतना पूरण करता है, इसलिए पुरुषु शेते इति पुरुषः। इस शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला जो चैतन्य परमात्मा है, वह पुरुष बिना प्रजापति के कैसे होगा? क्योंकि जो प्रजा है वह कहीं न कहीं से उत्पन्न होती है, सबका कोई न कोई मूल है, और जहां प्रजापति भी तपस्या करते हो कि हम में भी कोई शक्ति आ जाए, क्योंकि बिना शक्ति के हम शक्तिमान बनेंगे नहीं, शक्तिहीन की कोई उपासना नहीं करता है। यदि शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है, कौन पूछेगा? एक बार की बात है, भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हमेशा शिव की उपासना इस बुद्धि से करते थे। एक बार काशी में जा रहे थे तो आगे एक चांडाल जो श्मशान में रह करके शवों को जलाता, वह मिला और शव को आगे रख दिया। बोला, महाराज शंकराचार्य ने कहा, ये क्या किया तूने? कहा कि बस ये तो शव है। अतः शिव 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 शिव, पूछा ये शव और शिव में क्या अंतर है? चांडाल पूछ रहा, देखिए ये तो बड़ी गजब की बातें हैं, शव और शिव में अंतर, चांडाल पूछ रहा, कहा ये शक्ति विहीन है। शंकराचार्य भगवान ने सोचा ये आज ऐसे क्यों पूछ रहा है, कि अच्छा इसको हटाओ। पूछा कि किसको चांडाल कह रहे हो, हमारे शरीर को कह रहे हो कि आत्मा को कह रहे हो? शंकराचार्य भगवान ने सोचा एक चांडाल इस तरह की उत्तम बात नहीं कर सकता है, इसका मतलब है कि हम जो खाली शिव शिव भजते हैं और ये शव दिखा करके हमें शिव की शक्ति का स्मरण करा रहा है, तो बिना शक्ति के जो शिव है वह शव है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी की रचना किया, और सौंदर्य लहरी में वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब है भगवती आपका भजन करते हैं, तो जो पुण्यवान होगा वही आपका भजन कर सकता है। कथम अकृत पुण्य प्रभवती, जिसने पुण्य नहीं किया है वह शक्ति की आराधना कर ही नहीं सकता है। इसलिए शिव के अंतर्गत जो इकार है वही तो असली शक्ति है, जिसको हटा देने से शिव जो है स्वरूप हो जाता है, क्योंकि मृत्यु धावती जर्जर गेहे, मृत्यु कब दौड़ती है? जब शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो जो शक्ति है उसी के चलते तो हम शक्तिमान है। तो वह शक्ति का और शक्तिमान का अभेद संबंध है। जैसे मोबाइल से सिम निकाल दो आप, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो रहने वाली शक्ति है वह शक्ति किसकी है? यदि किसी शक्तिमान को मानते हैं कि किसी शक्ति वाले की शक्ति है तो शक्तिमान का भजन करना पड़ेगा, तब वो शक्ति प्रदान करेगा। यदि हम अपनी शक्ति मानते हैं तो हमारा दायरा छोटा है। दोनों ही स्थितियों में हम हैरान होते हैं। तो ब्रह्मा भी शक्ति का भजन करते हैं, विष्णु भी शक्ति का भजन करते हैं, इसलिए हमें भी शक्ति का भजन करना होगा। कहा यह शक्ति है क्या? कहा व्याकरण के दृष्टिकोण से सकलरी धातु है जो सामर्थ्य को बतलाता है। हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य को, हमारे प्रभुत्व को, हमारे ऐश्वर्य को बतलाती है। उसी तरह जो ईश्वर की शक्ति है वह व्यापक है, क्योंकि जो ईश्वर की शक्ति है वह माया है और जो हमारी शक्ति है वह अज्ञान है। यह वेदांत में तो अज्ञान सीमित होता है और माया जो होती है वो बड़ी होती है, वो समष्टि है संपूर्ण, तो उसको जानना बड़ी कठिन बात होता है। तो भगवान के भजन करने से जो उनकी शक्ति है वो आती है और भगवान के इच्छा से वो प्राप्त होती है। तो जो अंग नाम के प्रजापति हैं उनके पास शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में अंग रहे और शक्ति न रहे तो हम चल पाएंगे क्या? इसलिए उन्हें ऋषियों ने कहा कि भाई आप आराधना थोड़ा करो। तो आराधना किया तो उसने, आराधना में भगवान ने कहा कि आपको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र कैसे होगा? अपने शरीर से तो उत्पन्न होगा नहीं, उसके लिए तो खेत चाहिए ना, क्षेत्र। किसान अपने शरीर में तो उत्पन्न करेगा नहीं, उसे बीज लेकर के रखेगा तो कहीं ना कहीं क्षेत्र चाहिए। तो इसके लिए राजा अंग तपस्या कर रहे थे। इधर मृत्यु की जो बेटी थी सुनीता, उसने तपस्या किया। मृत्यु ने कहा, पुत्री तूने बड़ा गलत कार्य किया है। जो सुशंख महाराज तपस्या कर रहे थे तो उन्हें तूने चंचल होकर के हैरान किया। तपस्वियों का तप भंग करना बहुत बड़ा दोष है, इसलिए तुझे जो शाप प्रदान किया है कि तुझसे जो होने वाली संतान होगी वो चंचल हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगी। यह बड़ी ही कष्ट का विषय है, इसलिए तू भी तपस्या कर। तो उसके तपस्या करने से उसको जो पुरुष की प्राप्ति होती है, उसकी सखियां हैं कुछ, वह सखियां बतला रही है, देखो सखी, स्त्री को जब उसके मन का पुरुष मिल जाता है ना तो वह हमेशा खुश रहती है, क्योंकि स्त्री क्या है? लता है, बेल है, और पुरुष क्या है? वृक्ष है। तो वृक्ष को जैसे लता समेटते हुए चलती है और लता वृक्ष को सुरक्षित रखती है और वृक्ष से लता सुरक्षित रहती है, दोनों का अस्तित्व रहता है, उसी तरह से स्त्री और पुरुष का जो संयोग है वह दोनों को सुरक्षित रखता है, शक्ति और शक्तिमान की तरह से। इसलिए निराश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लताहा। जो वनिता है, लता है और पंडित है, ये तीनों निराश्रित नहीं शोभा प्राप्त करते हैं, इन्हें कुछ न कुछ आश्रय चाहिए। इसलिए तुम तपस्या करो, तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है, ईश्वर जब संतुष्ट होता है तो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम सत्य को कभी मत छोड़ना और सत्संग को मत छोड़ना। सत्य और सत्संग यह व्यक्ति को उत्तम सीमा पर ले जा सकते हैं, जहां जाना चाहिए, जो मनुष्य जीवन है वहां तक पहुंचाने में सत्य और सत्संग ये दो ही उपकारक है। क्योंकि सत्य रूपी अग्नि से जो महात्मा पुरुष है वह पाप रूपी ईंधन को जला देते हैं। पाप क्या है? ईंधन है, लकड़ी है। और सत्य क्या है? अग्नि है। तो अग्नि से जो सत्य पुरुष है, जो महात्मा है, उनके पास जो सत्य सद्व्यवहार है, जो सत्ता है, उस सत्ता रूपी सद्व्यवहार, सत्ता मतलब ईश्वर की सत्ता, ईश्वरीय गुण, दैवी संपत्ति, उसके द्वारा वो जो असत रूपी, जो पाप रूपी ईंधन है, उसको लकड़ी को वो जला देते हैं। और जब जला देते हैं तो जैसे सोना जल करके तप करके अपने स्वरूप में निखर आता है, उसी तरह महात्माओं के संसर्ग से जो उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, सोने की तरह से तप करके बाहर निकलते हैं और तब वो समाज में आभूषण का कार्य करते हैं। फिर उन्हें देख करके लोग भी तैयार होते हैं कि देखो इनको, देखो ये कितने चमक रहे हैं, कितने देदीप्यमान है, इनका ललाट चमक रहा है, इनका ब्रह्मचर्य देखो, इनका ब्रह्म तेज देखो। तो ये जो स्थिति है वह योग और क्षेम दोनों ही प्राप्त कराती है। सताम संगो महापुण्यो बहुक्षेम प्रदायक बाले पश्य सदृष्टांतम सताम संगस्य यद गुणम अपाम संस्पर्शनात् स्नानात् पानात् दर्शनतो पिवा मुनयः सिद्धिमायान्ति बाह्याभ्यंतर छालिता। अरे जल का स्पर्श करने से व्यक्ति का हाथ पैर तो शुद्ध होता ही है और पी करके भी केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः करके जो अंदर के पाप है वह शुद्ध हो जाते हैं। और फिर भागीरथी गंगा का जल हो तो क्या पूछना है, नाम लेने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जो सज्जनों की संगति है, महापुरुषों की संगति है, वह जल से कम नहीं है। मनुष्य